ओम शांति। इससे पहले कि हम क्लास की शुरुआत करें, सभी को एक काम दिया जाएगा। अपनी डायरी में ऐसी 5 चीजें लिखनी है कि जब जब जीवन में बाबा का साथ किसी भी कारण से छूटा तो कौन कौन सी बातों की अनुभूति हुई, दुख, दर्द, जो भी। तो रेड लाइट करेंगे, सभी पहले योग युक्त होकर बैठेंगे, एक कमेंट्री होगी और जब हम कहेंगे लिखना है तब लिखना आरंभ करेंगे। म्यूजिक अलर्ट, रिलैक्स। जीवन की अनंत यात्रा में कैसा भाग्य है मेरा, भगवान साथी बन गया। मुझे अपना संपूर्ण जीवन और विशेष रूप से ब्रह्मा कुमारी जीवन शुरू से अब तक एक विशाल पर्दे पर दिखाई दे रहा है। वो कुमारी जीवन वो भगवान का परिचय वो सेवा केंद्र पर जाना मुरली सुनना लिखना सेवाओं में हाथ बटाना वो संकल्प कि जीवन को ऐसे ही इन ब्रह्मा कुमारियों की तरह बनाना वो मधुबन में जाना पहली बार भगवान से मिलना सब कुछ एक विशाल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा। लौकिक माँ बाप कहीं पर सहयोगी तो कभी असहयोगी, वो धीरे धीरे ज्ञान की समझ और वो दृढ़ संकल्प मधुबन का वो समर्पण दादियों का प्यार बाबा की मदद उन पार्टियों को ले जाना उन माताओं की पालना करना, सेवा केंद्र पर आ रहा वो सारा परिवार, सब कुछ साक्षी होकर देखना है। मुझसे बड़े साथी छोटे, इस जीवन में आई हुई कठिन से कठिन परिस्थितियों, केवल मैं आत्मा देख रही, बिना हस्तक्षेप किए अपने ही अनेकों स्वरूप, विद्यार्थियों के सामने एक रूप, एकांत में एक रूप, मधुबन में कोई और रूप, बाहर की आत्माओं के सम्मुख कोई और रूप। मैं वास्तव में हूं कौन? इतनी परते, इतने व्यक्तित्व में बटा एक व्यक्तित्व, मैं कौन? नई आत्माओं को जो कोर्स मैं कराती हूं, क्या मैंने वो कोर्स किए है? क्या मुझे पता है मैं कौन? क्या इसका भान है समय कौन सा है? क्या ये भूल गई हूं कि सेवा के अतिरिक्त ज्ञान, योग और धारणा भी विषय है? लौकिक मां बाप, भाई बहन, सब कुछ दिखाई दे रहा, क्या इन सभी से मैं नष्ट मोह हूं? क्या अभी अभी अगर ये शरीर छूट जाए तो किस याद में, किसकी याद में, किस स्मृति में मैं इस संसार से विदा लूंगी? देख रही हूं स्वयं को, यह लंबा पथ दिखाई दे रहा है। हमेशा शिव बाबा मेरे साथ रहा, पर मैं देख रही हूं कहीं कहीं मैंने उसका साथ छोड़ दिया। क्यों छोड़ा और क्या मेरी स्थिति हो गई थी? क्या परिणाम था? अपनी अपनी डायरी में उन पांच परिणाम के विषय में लिखना आरंभ करेंगे कि जब जब मैंने बाबा का साथ छोड़ा, क्या हुआ उस दिन, क्या मन की स्थिति थी। कौन सी वो बातें थी जो मैंने आज तक किसी भी नहीं बताई। स्वयं की चेकिंग, स्वयं के अतीत को देखेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो घटनाएं अब भी हो रही है और अब भी मैं दुखी हूं। जब जब मैं बाबा को भूली क्या हुआ लिखेंगे। सभी लिखेंगे। अव्यक्त बाप दादा जैसे सम्मुख देख रहा और उसी को हम बता रहे हैं कि बाबा जब तुम्हारा साथ मैंने छोड़ दिया, उस शिव पिता का साथ जब छोड़ दिया, तब ये हो गया। लिखना बंद करेंगे, सम्मुख देखेंगे बाबा को। लिखना बंद और बाप से प्रतिज्ञा।
Thank you.
विदेश के एक कवि ने एक सुंदर कविता लिखी है और शायद आप सभी वो जानते हैं। उसने लिखा उस कविता में कि मैंने एक रात एक स्वप्न देखा और स्वप्न में मुझे ये दिखाई दिया कि मैं चल रहा हूँ समुद्र तट पर और वो जो पथ था वो जीवन का पथ था, मेरा संपूर्ण जीवन था। और उसमें मैंने देखा कि चार पैरों के निशान हैं, दो मेरे और दो भगवान के। और मैंने ये भी देखा कि जब जब जीवन में मुश्किलें आई, तूफान आया, आंधी आई, तब केवल दो ही निशान थे। और आज उसने जब ये स्वप्न देखा तो भगवान को कोसने लगा कि मैंने अपना सारा जीवन तेरी सेवाओं में समर्पित कर दिया, परंतु फिर भी ऐसा क्यों कि जब जब बाधाएं आई, मुश्किलें आई, दुख आया, दर्द आया, तुमने मुझे छोड़ दिया। और सबको ज्ञात है, भगवान ने कहा कि जब जब दुख था और जो दो पद चिन्ह थे वो तेरे नहीं मेरे थे, मैं तुम्हें अपने साथ कंधों पर लेकर चल रहा था। और उसने लिखा कि भगवान हमें कभी भी उन परिस्थितियों के बीच अकेला नहीं छोड़ देगा जिसमें उसे ये पता है कि इस परिस्थिति को ये बच्चा पार न कर सके। वो हमेशा उन्हीं परिस्थितियों से हमें गुजारता है कि जब उसे पूर्ण विश्वास होता है कि ये जो है ये अनन्य है, शक्तिशाली है और इसमें से ये गुजर सकता है और विजयी बनकर निकल सकता है। तो ऐसा उसके प्रति विश्वास। तो जब जब वो हमारे जीवन में है या जब तक वो हमारे जीवन में है या जब जब उसका साथ है, तब बहुत सी बातें होगी। और इसके विपरीत, जब जब हम उसका साथ छोड़ देंगे, मन से सूक्ष्म में, व्यक्ति मधुबन में है, बाबा की ट्रांसलेट के सम्मुख है, बाबा के कमरे में बैठा है, फिर भी हो सकता है वहां से कोसों दूर है। भगवान के साथ का संबंध या अर्थ कोई शारीरिक समीपता से नहीं है और ना ही यह किसी व्यक्ति से या फिर किसी स्थान से संबंधित है। उदाहरण के लिए मधुबन, मधुबन कोई भौगोलिक व्यवस्था नहीं है। केवल ये मधुबन जहां चार स्तंभ, चार स्थान है, चार धाम है, जब जब और जहां जहां उसकी याद है वो स्थान मधुबन है। हर वो स्थान जहां पर संपूर्ण पवित्रता है मधुबन है। हर वो स्थान जहां पर उसका यज्ञ है, उसकी सेवाएं हो रही है, उसके प्रेम में आत्माएं लगन में मगन है, वो मधुबन है। तो जब उसका साथ होगा या रहेगा तो बहुत सारी चीजें होगी। वो कौन कौन सी चीजें होगी उसकी हम चर्चा करेंगे। और जब जब वो जीवन का, हमारे जीवन से हम उसका साथ छोड़ देंगे तो भी बहुत सी चीजें होगी, उसकी भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले, जब शिव पिया साथ है तो क्या होगा? क्या होगा, क्या होगा? ज्ञान की बरसात होगी। ज्ञान की बरसात अर्थात आज सुबह की मुरली, बाप तुम्हें नई नई बातें समझाते हैं, न्यू न्यू पॉइंट्स निकलती रहती है, न्यू न्यू पॉइंट्स ऐड होती रहती है। जब उसका साथ होगा तो मन में ज्ञान का चिंतन चलेगा, जैसे ही उसका साथ दूर होगा ज्ञान के चिंतन से मन रिक्त हो जाएगा और वहां पे व्यर्थ का चिंतन आएगा। अपने मन को ज्ञान के चिंतन से भरना है। शाम की क्लास में हम कुछ विधिया ज्ञान की जो है चिंतन की, ऐसी 108 विधिया मनन की, उस पर थोड़ी बातें देखेंगे। तो सबसे पहली चीज है कि जब भगवान साथ है तो मन में ज्ञान चिंतन स्वतः ही चल रहा है। इसके विरुद्ध में जब ज्ञान चिंतन नहीं चल रहा है, इसका मतलब वो साथ नहीं है। ऐसी कितनी बहनें हैं कि जिन्होंने 69 से लेकर तो 2017 तक की सारी अव्यक्त वाणियां एक बार पढ़ी है, बहुत कम बहुत कम। आपको एक महाप्रोजेक्ट दे रहे हैं। कितने साल चाहिए? एक साल का। कौन सा प्रोजेक्ट? महाप्रोजेक्ट। एटलीस्ट एक रीडिंग हर एक की होनी चाहिए। एडमिशन लेट ली और एग्जाम आ गई और एग्जाम का पेपर देखकर हमने कहा ये आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न है, तो टीचर क्या कहेगा? तुम लेट आए, तुमको वो पढ़ना था, तुम्हारे आने से पहले जो कुछ हुआ। तुम ये नहीं कह सकते ये कहां से आ गया, ऐसा भी होता है क्या, वो भी यज्ञ में ऐसा होता है? ये पेपर तो किसने सेट किया? पेपर ही गलत है, पेपर को दोष देना। 69 से 70s में जो भी मुरलिया है और 80s की जो भी मुरलिया है, उसमें जो साइकोलॉजी की बातें हैं डीप, उतनी विश्व के किसी भी मनोविज्ञान की किताब में नहीं है। ऐसा एक भी प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर बाबा ने नहीं दिया है। रोज की साकार मुरली है, संडे की अव्यक्त वाणियां, इसके अतिरिक्त और सेवाएं हैं, और सेवा केंद्र का सारा काम है। उसके अतिरिक्त यदि कोई ये सोचे कि मुझे सारी अव्यक्त वाणियां एक बार पढ़नी है, उसके लिए विशेष पुरुषार्थ और विशेष त्याग करना पड़ेगा। त्याग बहुत सारी बातों का करना पड़ेगा, जो जो टाइम व्यर्थ जा रहा है उन सबको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। एक प्रश्न ये भी आता है, पढ़ने से क्या होता है? हमने उनको भी देखा है जिन्होंने सब पढ़ा है और याद तो कुछ भी नहीं। हम वो बात आज नहीं कह रहे कि याद करना है, चिंतन करना है, वो दूसरी बात। जैसे किसी भी कॉलेज में एग्जाम से पहले एटलीस्ट फर्स्ट रीडिंग तो हो जानी चाहिए, फर्स्ट रीडिंग, फिर बाद में उसका चिंतन, उसका मनन, सेकेंड रीडिंग और एग्जाम के लिए तैयारी, उसके नोट्स, वो बात की बात है। पर एटलीस्ट वन रीडिंग सारी अव्यक्त वाणियों की, सारी। दो तीन दिन पहले एक भाई ओपीडी में आए थे, उन्होंने कहा कि 90 तक का चल रहा है, 90 तक का सब कुछ हो गया। कुछ दिन पहले एक भाई का मैसेज आया था, उसने कहा मुझे आज इतनी खुशी हो गई। हमने कहा क्यों? उसने कहा आज मेरा सारी मुरलियां पढ़ के हो गई, 69 से 2017 तक की। बड़ा काम है पर चालू करना है। जब भी टाइम मिले अपना एक व्यक्तिगत पर्सनल पुरुषार्थ ये रहेगा कि एक दिन में एक मुरली, संडे की छोड़कर और साकार मुरली छोड़कर, और सब कुछ करते हुए एक मुरली पढ़नी है और एक दो मुख्य लाइन उसमें खींच लेना है वहां से। ये लक्ष्य रखना है कि ये पॉइंट मुझे कल की जो साकार मुरली मुझे सुनानी है उसमें ये पॉइंट मैं सुनाऊंगी। जैसे एक वाक्य आपको बता रहे हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य, एक मुरली में है जो बच्चे अपनी गलती से बार बार बीमार पड़ते हैं उनको बाप दादा ज्ञानी और योगी आत्मा नहीं कहते। कितना पावरफुल वाक्य है। जो बच्चे अपनी ही गलती से बार बार बीमार पड़ते हैं उनको बाप दादा ज्ञानी और योगी आत्मा नहीं कहते। जिसने अपने शरीर को ही चलाना नहीं सीखा वो विश्व के राज्य को क्या चलाएगा। ये दो लाइन है उस मुरली में। इस तरह अव्यक्त वाणियों में से खींच लेना है कुछ कुछ पावरफुल पॉइंट्स और वो पॉइंट अचानक काम आएंगे, शक्ति बन जाएंगे एकदम से। ज्ञान का एक वाक्य इतना बल दे सकता है। इतना कोई इतना एकदम से उदास हो गया है और ऐसी आत्मा अचानक कोई बात उसे याद आ जाए तो फिर से नव शक्ति संचार हो जाएगी चेतना में। तो सबसे पहला ज्ञान पढ़ना, दूसरा याद करना, केवल पढ़ के नहीं अब आगे बढ़ना है, कुछ कुछ चीजें याद हो जाए, उसके बाद तीसरा रिवाइज करना। फिर से उसी मुरली पर जा रहे हैं, 21 जनवरी 1969, 14 इंस्ट्रक्शंस दिए हुए यज्ञ के लिए। ये यज्ञ कैसा चलेगा, आगे क्या क्या होगा, क्लास जैसी चलती है वैसी ही चलती रहेगी, पोस्ट जैसी मधुबन से जाती है वैसी ही जाती रहेगी, लिखा पढ़ी जो मधुबन से हो रही है वैसी होती रहेगी, बाप दादा जो मुरली सुनाते हैं वो मुरली होगी, संदेशियों द्वारा जो मुरली होती है उसमें मुरली का जादू नहीं, दीदी और दादी, दीदी निमित्त बनेगी कुमार का सहयोगी मददगार होगी। इंस्ट्रक्शंस है सारे यज्ञ के लिए। ध्यान दीदार का पार्ट अब कम हो जाएगा, दीदी दादी जिसको निमित्त बनाएगी वही ध्यान दीदार में जाएगी और ध्यान दीदार में टाइम वेस्ट नहीं करना। और उसमें एक इंस्ट्रक्शन थी कि अब तुमको क्या करना है, अब तुमको मुरलियां रिवाइज करनी है। एक प्रश्न उस मुरली में बाबा ने पूछा है, क्या तुम्हें कल की मुरली याद है, और बाबा ने खुद ही उत्तर दिया है। पहला प्रश्न है क्या तुम्हें एक साल पहले की मुरली याद है, और बाबा ने खुद उत्तर दिया है कल की भी याद नहीं होगी। और बाबा ने खुद आगे कहा है कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसी होती है कि बार बार रिवाइज करने के बाद भी बुद्धि में नहीं ठहरती, इसलिए अब तुमको सारी मुरलियां रिवाइज करनी है। 26 जून 1969 अव्यक्तवाणी। अब ज्ञान सुनाने का पाठ पूरा हुआ 69 में, अब तुमको रिवाइज करना है। ज्ञान पूरा हो चुका है, अब खाली रिवाइज करना है। तो सबसे पहले पढ़ना, फिर कुछ कुछ बातें याद रखना, तीसरा कुछ कुछ बातें रिवाइज करना, चौथा ज्ञान का चिंतन करना। और हम दूसरों को वही बता सकते हैं जो हमने सूक्ष्म में चिंतन किया है। और सर्वश्रेष्ठ चिंतन वो है जो अशरीरी अवस्था में किया जाए। एक होता है कि ये मुरली है और इस पर सुनाना है इसलिए हमने ये चिंतन किया, परंतु चिंतन ऐसा हो शरीर से बाहर निकलकर किया हुआ चिंतन, वो सोचना जो अब तक किसी ने नहीं सोचा होगा। ऐसा चिंतन ही आत्मा में बल भरेगा। ज्ञान शक्तिशाली नहीं बनाता, ज्ञान का चिंतन शक्तिशाली बनाता है। लिख के रखना इस वाक्य को, केवल ज्ञान शक्तिशाली नहीं बनाएगा। अपनी खोट तो नशा चढ़े, गहराई में जाओ, एक एक पॉइंट को ले लो और सोचो ये क्यों कहा गया। चेक करो खुद को। सुबह कहा मुरली में, किसी को दुख नहीं दिया, ये चेकिंग तो हो गई। अब ये चेक किया, सुख कितनों को दिया? मास्टर सुखदाता हो वरदान। एक बाप ही संसार है स्लोगन। संसार अर्थात क्या? संसार में कौन कौन सी चीजें आती है? चिंतन। कोई भी एक वाक्य मुरली का, दो दो काम करने हैं। एक तो वो चिंतन जो हमें स्टूडेंट्स को सिखाना है, मुरली में बताना है। एक दूसरा चिंतन जो हमारा अपना हो, अपने लिए हो, जो किसी को भी सुनाना नहीं है, वो वे व्यक्तिगत है। ये जो बात थी, ऐसी बात थी कि एकदम पर्सनल, क्योंकि वो पॉइंट जो आई है, इसके लिए मुझे चिंतन करना है, क्योंकि ये मेरी कमजोरी है। तो दो प्रकार के चिंतन। और जो स्टूडेंट्स को भी आप मुरली सुनाते हो, उस मुरली सुनाने में भी हर दिन नवीनता, और उसके लिए वो मुरली पहले से हमारी पढ़ी हुई हो, केवल पढ़ी हुई नहीं, बहुत सारी याद हो। और हम तो सोचते हैं कि ऐसी मुरली सुनाई जाए, आधे घंटे में मुरली पूरी पढ़ के मुरली बंद, उसके बाद में चर्चा, अगला 20 मिनट क्या क्या सुना और ये पॉइंट क्यों कही गई, इसका क्या गुह्य राज है, ऐसा क्यों कह दिया बाबा ने। सुबह की मुरली उत्सव, कौन कौन से उत्सव मनाने हैं ब्राह्मण जीवन में। सुबह की मुरली, माया किसी को भी नहीं छोड़ती। कैसे? सुबह की मुरली विषय वैतरणी की खाड़ी है, ये खिवैया एक ही है। यदि वो खिवैया है तो वो क्या करता है? बाप संसार है, संसार अर्थात क्या? सुखदाता देना अर्थात क्या? दिल दर्पण में मुखड़ा देख लो, क्या देखना है दिल दर्पण में? सुबह भी अमृत वेले के बाद छोटी क्लास एक हुई थी, उसमें हमने थोड़ी चर्चा की थी दर्पण की। फिर से वही प्रश्न पूछ रहे अब आप सबको, ब्राह्मण जीवन में कौन कौन से दर्पण है? 10 दर्पण बताओ। ब्राह्मण जीवन में कौन कौन से दर्पण है? ज्ञान का एक दर्पण है, दूसरा सेवा भी एक दर्पण है, तीसरा समय एक दर्पण है, चौथा अंत मन दर्पण है, पांचवा कर्म एक दर्पण है, छठवा हमारा संपूर्ण स्वरूप एक दर्पण है संगम युग का, सातवां लक्ष्मी नारायण दर्पण है। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने बैठ जाओ और देखो और उनमें और मुझ में क्या है। आज भी कहा है भरने लायक हूं। अगला ब्रह्मा बाप का जीवन ही दर्पण है, उसमें देखो। नौवां बाप, क्या तुम जानते हो किसके सम्मुख आए हो? तुम दर्पण के सम्मुख आए हो, बाप स्वयं एक दर्पण है, भगवान ही दर्पण है, उसमें अपने आप को देखो। और कौन सा दर्पण है? दिल और मन एक ही है, दिल दर्पण मन दर्पण, और कौन सा दर्पण है? और कौन सा रह गया? स्मृति विवेक धारणा ये दर्पण थोड़ी है। बाबा ने जो कहा है वो बताओ। समय हो गया। श्रीमद् ज्ञान एक ही है और ब्राह्मण परिवार और हमारा हमारा चेहरा, चेहरा ही दर्पण है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। ये सारी 10 पॉइंट्स अलग अलग मुरलियों में अलग अलग जगह पर आई है। तो जब एक पॉइंट मुरली में आती है उसको वहां से उठाओ मुरली बाजू में और अब सोचो इसके विषय में और क्या क्या कहा हुआ है। यहां से चिंतन की धारा चालू होगी। कोई भी चीज जो मुरली में आ रही है उसको तुरंत स्वीकार नहीं करना है। साकार मुरली है आज की कॉपी। तो जो उसमें आता है, एक तो हमने दूसरों को हमने कहा ना दो भागों में विभाजित करना है, एक जो हमको दूसरों को क्या सुनाना है, एक हम वो सोचेंगे, एक वो सोचेंगे कि मेरे लिए इसमें से क्या है जो मुझे किसी को भी नहीं सुनाना है, जो इतनी अत्यंतिक आंतरिक है, ऐसी वो कौन सी पॉइंट है इस पूरे 4 पेज में। यहां पर किसी ने टिक मार्क भी किया है, वहां कौन सी नदी है और यहां कौन सी नदी है, कौन सी दो नदियों की चर्चा की है आज बाबा ने। घासलेट की नदी और ट्रक्त की नदी। तो ये जो 4 पेज है शाम को हम देखेंगे कैसे इस एक ही मुरली को अलग अलग विधि से हमको चिंतन करना है। कुछ चिंतन दूसरों के लिए, कुछ स्वयं के लिए, कुछ कुछ ज्ञान के रीति से, कुछ कुछ ज्ञान की पॉइंट है जो हमें बुद्धि में आएगी, जो नई बातें हमको पता चलेगी, कुछ कुछ पॉइंट्स जो है वो सुनाने के लिए है, कुछ कुछ धारणा की है दूसरों को सुनाने के लिए और कुछ कुछ हमें अपने जीवन में लाने के लिए। तो इस पूरी मुरली से कुछ तो बातें निकालनी है। तो जब शिव पिता साथ है तो क्या होगी, ज्ञान की बरसात, अर्थात परमात्मा ज्ञान का चिंतन मनन और लास्ट बात और एक ज्ञान में ही ज्ञान की चर्चा। आप में से कितने हैं जो ज्ञान की चर्चा करते हैं, मुरली सुनाना नहीं, व्याख्यान नहीं, प्रवचन नहीं, भाषण ठोकना नहीं, धुआधार भाषण, ये करो वो करो ऐसा करो और वैसा करो, ये नहीं। एक राजनेता एक गांव में जाता है इलेक्शन में कैंपेनिंग करने और वहां देखता है केवल एक किसान आया है भाषण सुनने। अब क्या करे, इतना खर्चा किया और कोई सुनने आया ही नहीं, तो वो किसान से पूछता है क्या करे। तो किसान कहता है मेरे पास 20 गाय है और जब 20 गाय में से कभी कभी एक ही गाय रहती है तो भी मैं उसको चारा तो खिला ही देता हूं। तो आप भी ऐसा ही समझो कि मैं तो हूं ना सुनने के लिए, जो आपको सुनाना है सुनाओ। तो वो नेता धुआधार भाषण देता है एकदम, 1 घंटा तक पावरफुल भाषण देने के बाद में उस किसान से पूछता है कैसी रही। तो किसान कहता है भाषण तो बहुत अच्छा था परंतु मेरा एक नियम है कि जब 20 गाय की जगह एक गाय होती है तो मैं एक गाय को एक ही गाय का खाना खिलाता हूं, 20 का नहीं। तो हमारे सुनाने में भी पावर तभी होगी जब हम उसके स्वरूप होंगे। हमारे शब्द शक्तिशाली तब होंगे जब हम स्वयं उसका स्वरूप है, नहीं तो वो शब्द निरर्थक है। तालियां बजेगी बाहर परंतु पावर नहीं होगी उसमें। 8 बजे उठकर 6 बजे उठकर जाकर कहीं अमृत वेले पर पावरफुल भाषण देना बहुत आसान है, हंसी की बात तो नहीं कहेंगे, खराब बात है, पर कभी एक आत्मा आई थी और जिसने मेडिटेशन हॉल ओम शांत पांडव भवन में उनका लेक्चर था एंगर मैनेजमेंट। लेक्चर पूरा हुआ और जैसे ही आंगन में आई, एक भाई ने कुछ गलती कर दी, इतना उसको डांटा। और वो सारे स्टूडेंट्स जो ऊपर थे आकर कहने लगे, ऐसा स्पीच हमने आज तक नहीं सुना, इतना पावरफुल था। पर उसका प्रभाव वहीं तक रहेगा, धारणा नहीं बनेगी। वो जिन चीजों की हमने जितनी धारणा की है उतना ही हम दूसरों को करा सकते हैं। जो हम में ही नहीं है वो दूसरों में कहां से आएगा, चाहे कितना भी बोलो। इसके लिए ज्ञान पढ़ना, ज्ञान याद करना, रिवाइज करना, चिंतन करना और चर्चा करना। वारे मैं ब्राह्मण आत्मा एक किताब है, उसमें ब्राह्मण आत्माओं के 10 कर्तव्यों की लिस्ट है। उन 10 कर्तव्यों में से कर्तव्य नंबर 10 ज्ञान की चर्चा करना ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य है। जो केवल ज्ञान पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं पर चर्चा नहीं कर रहे आपस में बैठकर, तो पूरा कर्तव्य नहीं हो रहा है। यह ज्ञान इतना क्लिष्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ आता है इसमें। इतनी ढेर सारी बातें हैं, अपोजिंग है। कभी तो वो कहता है संगीत सुनो, कभी कहता है तुम्हें आवाज, गीत, कविता, संगीत सबके उपराम जाना है। कभी कहता है जो बच्चे ये कहते हैं कि हमारा तो शिव बाबा से प्यार है और ब्रह्मा से कोई प्यार नहीं, शिव बाबा उसका प्यार स्वीकार नहीं करते। और कभी कहते हैं ये ब्रह्मा को याद करोगे तो नर्क में जाओगे, बिल्कुल देहधारी को याद नहीं करना। हाँ, ये दूसरी बात है, ये कह कौन रहा है, शिव बाबा या ब्रह्मा खुद अपने लिए? एक बहुत सुंदर प्रश्न है, किसी ने पूछा था द्वापर से जो साक्षात्कार होते हैं वो कौन कराते हैं? सोच समझ के उत्तर देना। द्वापर से जो साक्षात्कार होते हैं वो कौन कराता है? मुरलियों में तो आता है मेरा पाठ द्वापर से चालू होता है और जो भी साक्षात्कार होते हैं मैं कराता हूं, भक्ति का भाड़ा मैं देता हूं। परंतु ऐसा नहीं है, साक्षात्कार की चाबी मैं किसी को नहीं देता, बाकी जो लेना है ले लो, स्वर्ग ले लो, वो ले लो, पर ये मैं नहीं दूंगा, मैं ही मेरे पास रखता हूं बस। सूरज भाई जी ने एक बार बाबा से प्रश्न किया था हिस्ट्री हॉल में, सीधा डायरेक्ट, बाबा द्वापर से जो साक्षात्कार होते हैं कौन कराते हैं, आप या कोई और? बाबा ने कहा था द्वापर से जो साक्षात्कार होते हैं वो मैं नहीं कराता, ऑटोमेटिक होते हैं। जाके रही भावना, जैसी प्रभु मूर्ति आती न देख ही तैसी, जिसकी जो भावना है वैसा है दिखेगा। जो हनुमान का चिंतन कर रहा है वो ज्योति बिंदु कहां से आएगा द्वापर में उसको हनुमान का साक्षात्कार कराने? उसको तो शरीर चाहिए। जो जिसका भगत है उसको वो दिखेगा अपने आप, जितनी तीव्रता होगी इंटेंसिटी अपने आप दिखता है। हाँ, फिर भी मुरलियों में आता है, इसलिए कहा ना दो अपोजिंग चीजें एक साथ कुछ बातें कहती है, कुछ बातें कहती है। एक बार विदेशियों को कहा था यदि उदास हो जाओ तो बाथरूम में जाकर डांस करो, कहा है बाबा ने, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, ओम शांति भवन में चले। अच्छा है, गिरेंगे फिर फ्रैक्चर होगा तो ज्यादा याद करेंगे ना। और कभी तो कहा है ये गीत संगीत बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम्हें छोड़ देना चाहिए ये सब चीजें, तुम्हें आवाज से परे जाना है, ये सब में क्यों जाते हो? तो दोनों चीजें कही है, इसलिए ये ज्ञान इतना आसान नहीं है। अलग अलग जगह पर अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टरी अपोजिंग पॉइंट्स है, व्यक्ति टाइम प्लेस और पर्सन के हिसाब से मुरली चली है। इसलिए चारों पांचों चीजें करनी है ज्ञान से संबंधित। तो जहां शिव पिता साथ है वहां क्या होगा? ज्ञान रत्नों की बरसात होगी, ज्ञान चिंतन होगा, मनन होगा, अध्ययन होगा, चर्चा होगी, लिखना होगा, जो लिख सके है लिख सकते वो लिखो। या और एक काम दे रहे हैं आपको, रोज की मुरली से टॉपिक्स निकालने हैं। क्या करना है? टॉपिक्स, वो पॉइंट्स बहुत लिख लिए हमने, लंबी लंबी पॉइंट्स, केवल टॉपिक्स लिखने हैं। क्योंकि ऐसा शायद हर समय नहीं होता है कि आप मुरली सुनाते हो, कभी कभी आप ऑडियंस भी होते हो, हर दिन ही एक ही बहन सुना है ऐसा कम होता है। तो जिस दिन नहीं सुनाते हैं उस दिन सुनते सुनते कोई भी पॉइंट्स नहीं लिखनी है, केवल टॉपिक, 10 टॉपिक। जैसे ये मुरली है, एक टॉपिक यहां से विषय वैतरणी की खाड़ी, यह है एक टॉपिक। मुरली सुनते सुनते टॉपिक लिख के रखो और सारे दिन भर जब जब समय मिले उस पर थोड़ा थोड़ा चिंतन करना, सारे दिन भर। दिव्यता अर्थात क्या, दूसरा टॉपिक, इसे कहते हैं दिव्यता, परिभाषा, दिव्यता किसे कहते हैं, दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक, तुम्हें 100% सर्व गुणों से संपन्न बनना है। सर्व गुण संपन्न अर्थात क्या, टॉपिक लिख के रख दिया। दिल दर्पण में क्या देखना है, टॉपिक लिख के रख दिया। वनोत्सव वो मनाते हैं तो ब्राह्मण जीवन में उत्सव कौन कौन से है, टॉपिक। इस तरह से टॉपिक निकालने, ठीक है। तो यह सबसे पहली है ज्ञान की बरसात या ज्ञान। दूसरा, जब वो साथ है तो संपूर्ण पवित्रता का अनुभव होगा। जब अपवित्रता का अनुभव हो रहा है इसका अर्थ उसने साथ छोड़ा है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, बाप का दिल तख्त कैसा है, बहुत प्योर। और इसमें केवल वो आत्मा बैठ सकती है जो बहुत प्योर है, दूसरी आत्मा इसमें नहीं बैठ सकती। बैठने का प्रयत्न भी करेगी तो गिरेगी नीचे। ब्रह्मा कुमारी अर्थात अनटच्ड, संकल्प में भी अनटच्ड। तो जहां पर बाप साथ है, पवित्रता का सागर साथ है, तब पवित्रता होगी। यदि अपवित्रता है इसका अर्थ पवित्रता का सागर विदा हो गया है, चला गया है। सभी ने वो जगदीश भाई की सुनाई हुई बात सुनी होगी और सुनाते भी होंगे शायद, उस कन्या की कहानी जो कि पनघट पर पानी भर रही है और वहां एक युवक आता है और उससे कहता है मुझे प्यास लगी है पानी दो। वो कहती है पानी मैं दूंगी पर एक शर्त है, कौन सी? अंग से अंग न लगे। वो कहता है ठीक है और वो उसे पानी देती है और वो पानी पीता है। कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी हो जाती है। उनके माँ बाप तय कर देते, उन्होंने एक दूसरे को देखा नहीं है। और जैसे ही पहली बार एक दूसरे के सामने आते हैं तो वो कन्या कहती है अपना वादा याद रखना। तो ब्रह्मा कुमारी अर्थात अनटच्ड, और प्यूरिटी एक बहुत बड़ी मंजिल है, उसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स है। ऐसा नहीं किसी ने एक बार प्रतिज्ञा कर ली और काम हो गया, ऐसा नहीं है। यात्रा है पवित्रता एक, और इस यात्रा में सभी को बहुत सारे उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ेगा। वो इतने सूक्ष्म होंगे कि किसी और को पता नहीं, क्योंकि वो प्रकट अचानक होते हैं। इसके लिए कोई अगर कहे कि ये ऐसा है, प्रतिज्ञा कर ली, और एक दूसरी बात, आज 29 सितंबर है, वर्ल्ड हार्ट डे, पता है सभी को, विश्व हृदय दिवस, वर्ल्ड हार्ट डे है। और इस बार का वर्ल्ड हार्ट डे में जो WHO की तरफ से आया है, वो आया है टेक केयर ऑफ योर हार्ट, अपने दिल की देखभाल करो। थीम जो है वो क्या है, अपने दिल की देखभाल करो। उन्होंने कोई और रीति से कहा है, बीमारियां ना होने के लिए आहार विहार व्यायाम, ये तीन चीजें, परंतु हम दूसरी तरफ से दूसरे अर्थों से कह रहे हैं कि अपने दिल की देखभाल करो, अर्थात उसमें अपवित्रता न घुसने पाए। सुबह भी हमने चर्चा की थी दर्पण की, दर्पण में 7 प्रकार के दोष हो सकते हैं, कौन कौन से, जो सुबह थे वो नहीं बताएंगे। दर्पण में 7 प्रकार के दोष हो सकते हैं, कौन से, जो नए आए हैं, जो अमृत वेला नहीं थे वो बताएंगे। दाग, एक तो दाग, दर्पण में दाग लग गया तो कैसे देखेंगे, नहीं दिखेगा, अस्पष्टता के 7 कारण। दूसरा, धूल मिट्टी, अगर धूल मिट्टी जमी है तो कैसे देखेंगे। तीसरा, क्रैक। चौथा, चौथा फागी। पांचवा, पांचवा खरोचा हुआ, स्क्रैचेस है उसके ऊपर। छठवा, खुरदरा, खुरदरा हो गया है वो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और सबसे लास्ट टुकड़े टुकड़े हो गए उसके। तो सबसे पहला है दिल दर्पण में कोई भी अपवित्रता की धूल मिट्टी ना हो, दूसरा कोई भी विकारों के दाग धब्बे ना हो, उसके बाद कोई भी हलचल की का खुरदरापन ना हो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऊपर कभी स्थिति, ऊपर कभी नीचे, कभी पावरफुल अमृत वेला, कभी अमृत वेला पूरा ही मिस। कभी परमात्मा प्रेम के में आंसू बह रहे हैं और कभी आंसू आंसू तो क्या, कुछ भी नहीं निकल रहा है, बाबा भी है यही भूल रहा है। क्रैक, डिसहार्मनी की क्रैक, असामंजस्य। मन कुछ कह रहा है, बोल कुछ रहे और कर कुछ रहे, तीनों अलग अलग है, हार्मनी नहीं है, महसूस हो रहा है अंदर से डिसहार्मनी है। धूल, दाग, फागी, आलस्य और अलबेलेपन की फागी, इस दर्पण में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। दर्पण टूट गया है, दिल शिकस्त, इतने उदास, इतने कि अब लग रहा है अब पुरुषार्थ होगा नहीं। जिसको पुरुषार्थ करना है करे, जिसको भट्टी में जाना है, क्लासेस सुनना है सुनो, हमारे बस की बात नहीं है। कई कई ब्राह्मण ऐसे हैं हमारे पास, ओपीडी में रोज कम से कम 20-25 बहने आती है, कुछ अलग अलग तकलीफ के साथ, और हमने देखा है उनको साक्षी होकर कि कहीं ना कहीं इनमें भी उदासी है। एक बहुत खराब बात है, कहने जैसी नहीं है पर हम कहते हैं। एक बहन बता रही थी कि हम खुद इतने अशांत है कि कोर्स कराने की भी शर्म आती है। क्या कोर्स कराए, उनको शांति कैसे मिले, हम खुद ही अशांत है। क्या बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से कोर्स कराते हो गया और वो ही कर रहे हैं, पर हम बेचैन हैं अंदर से कम उसने माना तो, स्वीकार तो किया, इलाज हो सकता है बीमारी का पता चलने के बाद, पर कोई है जो मानते ही नहीं तो इलाज भी नहीं होगा। तो दर्पण के साथ, खोट की खाट साथ डिफेक्ट्स है इस तरह की। खुरदरा अर्थात, खुरदरा अर्थात किस बात का खुरदरापन? एक बताया खुरदरा और दूसरा बताया उसी के जैसा स्क्रैचेस। स्क्रैचेस कौन सी? हर्ट्स, गहरे जख्म दिल पर, दूसरों के द्वारा दिए गए या खुद ही निर्मित किए हुए जख्म है। किसी ने कुछ कहा था 10 साल पहले, अब तक याद है। किसी ने कुछ अपशब्द बोले थे, अब तक भूले नहीं है। किसी ने कुछ ऐसा ऐसा कहा था, अब तक जैसे ही वो आत्मा सामने आती है वो सब याद आ जाता है। एक बहन ओपीडी में आई थी, वो कहती थी कि यहां पर दर्द होता है छाती में, ईसीजी नॉर्मल, सारी टेस्ट नॉर्मल। कब होता है? ऊपर चढ़ते समय, सीढ़ी चढ़ते समय, या दौड़ते समय, भागते समय, कुछ करते समय, तब नहीं होता है। यहां दर्द होता है, पर कार्डियक लग रहा है बिल्कुल, जैसे हार्ट पेशेंट का यहां दर्द होता है। तो कब होता है दर्द? उसने कहा जब एक विशेष आत्मा है सेंटर पर, वो जैसे ही सामने आती है यहां दर्द चालू होता है, बाकी टाइम पे नहीं होता है। अब इसका इलाज करो, एंजियोग्राफी करनी है तो बताओ, पर बाकी टाइम नहीं होता है। दौड़ सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, पर एक आत्मा है जैसे ही सामने आती है इधर कुछ कुछ होने लगता है। क्या इलाज करेंगे आप बताओ? इसका कौन सी दवाई दे? यदि आप डॉक्टर हैं और आपके पास वो आ जाए तो क्या दवाई देंगे? क्या करेंगे? प्यार? कौन सी दवाई देंगे? आत्मा ने उस आत्मा को माफ नहीं किया है, पकड़ के रखा है कि इसने जो कुछ किया अच्छा नहीं किया मेरे साथ, और वो दब गया। जैसे सुबह चर्चा की थी दमित इच्छाएं, वैसे सप्रेस्ड हर्ट्स, वुंड्स, अंतर्मन के वो दबे हुए जख्म अभी भी वैसे ही है। जो अचानक दर्द होता है, अचानक घृणा, अचानक नफरत उस आत्मा के प्रति। सूरज भाई जी ने एक बार एक अनुभव सुनाया था। एक भाई बाबा मिलन में बैठा था, बाबा आए हुए थे और उसके मन में बहुत तैयारी की, 4 दिन का मौन, सारी क्लासेस सुनी, और बाबा जैसे ही आए उसको लगा एक AK-47 राइफल लूं और सबको मार दूं यहां पर जितने लोग हैं। वो अपने आप को समझाने लगा, रे भगवान आया है, भगवान आया है, पर वो मन में ऐसा घुस गया विचार कि उसको लगा सबको उड़ा दूंगा यहां पे जितने हैं। अब आया था भगवान से मिलन मनाने और ये विचार अकस्मात घुस गया। अचानक याद आ गया कि ब्राह्मण परिवार की ही किसी एक आत्मा ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था और मैं बदला लूंगा, आप यहां जितने लोग हैं सबको मार दूंगा। उसका भगवान का मिलन रह गया बाजू में और ये विचार ने पकड़ लिया। मन की गति बहुत सूक्ष्म है, कहां से कब आ जाता है पता नहीं। इसके लिए रोज अपने मन को देखना है अमृत वेला। उन सभी आत्माओं को माफ कर देना जिन्होंने हमको बहुत सताया, दुख दिया, जो भी किया, वो पार्ट था। अभी और एक प्रश्न आपसे पूछ रहे, हमें माफ क्यों करना है दूसरों को? हम खुद को हल्का करने के लिए, एक। दूसरा, हमें दूसरी आत्माओं को माफ करना है क्यों? क्योंकि वो हिसाब किताब था, और आगे आगे बढ़ने के लिए, और हम दाता के बच्चे हैं, और हम कौन है? अपने ऊंचे वाले सोमान याद करो, हम पूर्वज आत्मा है इसलिए हमको माफ करना है। हम होवनहार देवी देवता, तो देवी देवता है तो क्या माफी करते रहेंगे? सब जो चाहे वो करते रहेंगे और हम माफ करते रहेंगे। और ये भी राइट है, हम मास्टर मुक्ति दाता है, और बाबा हमें माफ करता है इसलिए हमें उनको माफ करना है, और हम रहम दिल है और कर्म बंधन हमें बनाने नहीं है, नहीं है, इसलिए माफ कर देना है। और इधर से आवाज कम है, इधर की बहुत आवाज ज्यादा है, इधर स्टॉप, इधर बताओ। हम दाता के बच्चे हैं, हम रहम दिल है, हम माफ नहीं करेंगे तो उसको क्या, उसको तकलीफ। वो तो बहुत मजे में है, उसको तो ये पता ही नहीं, वो तो और ही षड्यंत्र बना रहा है अंदर ही अंदर हमारे विरुद्ध। और संपूर्ण अवस्था में बाधा है। बाबा ने कहा है किसी एक आत्मा के प्रति भी मन में यदि घृणा है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक आत्मा के प्रति, सब आत्माओं के प्रति अच्छे संकल्प, पर एक के प्रति घृणा है तो हम आगे नहीं जा सकते। और हमें माफ क्यों करना है? हम अचल, हमें खुद ही नहीं माफ करेंगे तो हम खुद ही सफर कर रहे हैं, खुद ही पीड़ा में है, खुद ही दर्द में है। और हम कहा, हम गलतियां तो हमसे भी हुई है और हम बाप समान विश्व कल्याणकारी है। और बहुत पावरफुल पॉइंट है जितनी आपने सब सुनाई, ये अगर टाइम पर याद आ जाए तो अहोभाग्य। जो पॉइंट्स अभी सुनाई, टाइम पर याद आ जाना। अव्यक्तवाणी 21 जनवरी 1969, फर्स्ट अव्यक्तवाणी, बातें तुमने बहुत सुनी, समय पर याद आ जाना, यह है तीव्र पुरुषार्थ। अव्यक्त महावाक्य बाबा के, बातें तुमने बहुत सुनी, समय पर याद आ जाना, यह है तीव्र पुरुषार्थ। और क्यों माफ करना है? उस आत्मा में ड्रामा का पार्ट था, ठीक है, ड्रामा एक कारण है, इसलिए माफ करना है। माफ क्यों करना है? बाबा को खुश करने के लिए। तुम माफ नहीं करोगे तो वो खुश नहीं होगा। अच्छा ठीक है, ये भी राइट है। उसकी खुशी के लिए, हम तो चाहते ही नहीं माफ करना, वो कह रहा है कुछ माफ करो। इसलिए जैसे एक छोटे बच्चे को उसके पिता ने कहा कि, वो एक तगड़ा सा बच्चा था छोटा, और उसके जितने दोस्त था उसको पकड़ पकड़ के रोज मारता था वो, और क्रोध करता था। तो उसके पिताजी ने कहा, तुमको क्रोध बहुत आता है, अब एक बात मैं तुमको कहता हूं, जब भी तुमको क्रोध आए ना, एंगर मैनेजमेंट की क्लास अभी अभी पिताजी करके आए होंगे, तो वहां पे बताया कि उल्टी गिनती करो, 100, 99, 98, तो एक तक पहुंचते पहुंचते क्रोध शांत हो जाता है। तो उसके पिताजी ने उसको कहा कि जब भी तुमको क्रोध आए ऐसे करना। तो उसने कहा ठीक है। तो दूसरे दिन पिताजी ने खिड़की से देखा कि ये उसका बेटा दूसरे बच्चे के छाती पर बैठा हुआ है और गिनती कर रहा है। तो पिताजी ने कहा, अरे मैंने तुमको बोला था ना, क्रोध आया तो गिनती करना ताकि क्रोध शांत हो जाए। तो वो कहते, वही तो कर रहा हूं, एक बार 100 पूरे हो गए एक तक, फिर इसको मैं पकड़ूंगा, फिर इसको देखूंगा क्या करना है, नहीं तो ये भाग जाएगा। इसके लिए पकड़ के रखा है उसको और गिनती चालू है, एंगर मैनेजमेंट। माफ क्यों करना है? एक लास्ट और फाइनल आंसर दे रहे हैं आपको। 31 दिसंबर 1995, अव्यक्तवाणी, तुम्हें दूसरी आत्माओं को माफ करना है क्योंकि ये बाप का आदेश है। सब अगर मगर एक तरफ, सारे उत्तर एक तरफ, क्योंकि मैं कह रहा हूं तुमको, तुम्हें दूसरी आत्माओं को माफ करना है क्योंकि ये मेरा आदेश है। तो शिव पिया साथ है तो सबसे पहला ज्ञान, दूसरा पवित्रता। ये सारी पवित्रता की बातें चालू थी। तीसरा, जब वो साथ है तो उसकी सारी शक्तियां साथ होगी। और जब हम कमजोर है इसका मतलब वो साथ नहीं है, फिर से उल्टा, जब हम कमजोर अनुभव कर रहे हैं, शक्तिहीन अनुभव कर रहे हैं, करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब वो साथ नहीं, उसके साथ को बढ़ाना है, प्रभु साथ को। दादी जानकी ने एक बार कहा था बाप को कब कब याद करो? तो दादी ने कहा था, जब सॉक्स पहनते हो और सॉक्स निकालते हो तब भी बाप को याद करो। लंदन में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, तो एक बहुत बड़ा बोर्डिंग होर्डिंग जो होता है बोर्ड बना था और लगा था, उसमें लिखा था दादी जानकी लव्स गॉड, ऐसा लिखा था। ब्रह्मा कुमारीज का एक प्रोग्राम, दादी जानकी लव्स गॉड। तो किसी एक वरिष्ठ भाई ने क्लास में बात बताई थी कि ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, ये लिखना चाहिए था गॉड लव्स दादी जानकी। ये संसार वालों को नहीं पता कि भगवान स्वयं उससे प्यार करता है। क्यों इतना प्यार करता होगा उससे? क्या उस आत्मा ने ऐसा किया होगा? जरूर कुछ तो उसमें होगा। कैसी कैसा त्याग होगा और कैसी तपस्या होगी। पहली बार जब दादी लंदन में गई थी तो वहां पर सोने के लिए कुछ नहीं था, तो वो जो एक खटिया थी पुरानी, उस खटिया को प्रयोग किया गया। दिन में वो खटिया संडली बनती थी, रात में बिस्तर। उसी में चार 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 साल जो साड़ी दादी पहन के गई थी, और जब लंदन से वापस आई 4 साल के बाद वही साड़ी थी। उससे ये पता चलता था वहां का जीवन कितना त्यागमयी रहा होगा। विदेश की महिला ने एक गीत किताब लिखी है दादी जानकी पर, अ सेंचुरी ऑफ सर्विस दादी जानकी, हॉचकिंसंस उस बहन का नाम है, फर्स्ट नेम कुछ है। तो उसमें प्रस्तावना में एक चीज लिखी है उस किताब की, इंग्लिश किताब है, सेंचुरी ऑफ सर्विस में एक चीज दादी के लिए लिखी है कि यदि एक भारत की महिला अनपढ़ जिसको इंग्लिश नहीं आती, एक भारत की महिला कमजोर अबला नारी यदि सारे विश्व में लंदन जैसे स्थान पर अपना एक परमानेंट घर बना सकती है, वेल देन एवरीथिंग इज पॉसिबल। देन इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं है। जिसको कुछ नहीं आता है इस तरह की बातें, फिर भी वो लंदन जैसे शहर में अपना घर उसने बना दिया, अगर ये संभव है तो संसार में असंभव कुछ भी नहीं। ये 3 लाइन लिखी है उस किताब की फ्रंट में। तो शक्तिशाली बनना है, उसका साथ रहेगा तो शक्ति होगी, साथ छोड़ा तो कमजोर अनुभव होगा। और यदि कमजोर अनुभव हो रहा है इसका मतलब वो बहुत दूर है, उसके नजदीक जाना है। व्यक्तियों के नजदीक जाने से शक्तियां कम होती है, परमात्मा के नजदीक जाने से शक्तियां बढ़ती है। देह के नजदीक जाने से शक्तियां कम होती है, देह से दूर जाने से शक्तियां बढ़ती है। निर्णय हमारे हाथ में है, किस ओर मैं जा रहा हूं। उसके बाद है परमात्मा मदद। जब परमात्मा साथ है तो परमात्मा मदद होगी। हर चीज में ऐसा अनुभव होगा कि उसने ये कर दिया, हम कुछ नहीं कर रहे, अपने आप कर दिया। हमने तो संकल्प किया था बस। जब दादी जान की पहली बार पहुंची थी वहां पर, तो दादी ने वहां पर 2 संकल्प किए थे कि एक सेवा केंद्र थेम्स नदी जो है उसके किनारे होना चाहिए, और दूसरा संकल्प ऑक्सफोर्ड में होना चाहिए। असंभव सा संकल्प था तब। लंदन जैसी जगह और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहां पर सेंटर होना चाहिए, ये संकल्प, और वो पूरा हो गया। कितना पावरफुल वो संकल्प होगा। जब ऐसा पावरफुल संकल्प है और ऐसी परमात्मा साथ की अनुभूति है, तब परमात्मा मदद बरसेगी। जहां मदद है, जहां हिम्मत है वहां मदद है, जहां दृढ़ता है वहां सफलता है, और जहां निश्चय है वहां विजय है। इन 3 लाइन को अपनी डायरी में नोट करके रखना है। जहां निश्चय है वहां विजय है, जहां हिम्मत है वहां मदद है, और जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। सभी ने सुने हुए हैं, नया कुछ नहीं है। परंतु नए रीति से फिर से अपने मन को समझाना ऐसा है, तो परमात्मा मदद। उसके बाद है परमात्मा छत्र छाया, सुरक्षा का अनुभव। हम हिसार गए थे तो वहां पर जो बहन जी है हिसार में, उन्होंने उनका अनुभव लिखा हुआ भी है और उन्होंने बताया भी था कि बहुत पहले जब वो एक बार किसी गीता पाठशाला में क्लास कराने गए थी, रात हो गई थी, 11 बज गए थे, 12 बज गए थे, आने के लिए कुछ साधन नहीं था, वो सड़क पर खड़े थे और फिर एक ट्रक आया उधर से, उन्होंने उस ट्रक को रोका और रिक्वेस्ट की कि क्या मुझे वहां छोड़ दोगे। उन्होंने कहा ठीक है बैठ जाओ, और वो बैठ गई। और जैसा ही ट्रक चालू हुआ, वो जो ट्रक का ड्राइवर था उसकी दृष्टि वृत्ति बदल गई और विकार ने उसके मन में प्रवेश कर लिया, और वो उधर जाने की जगह ट्रक को किसी और ही दिशा में मोड़ लिया उसने। और जैसे ही इस बहन को पता चला, एकदम से जैसे जागरण हो गया और उसने मन ही मन शिव शक्ति स्वरूप धारण कर लिया, और उससे बात की कि तुमको पता है तुम किसको कहां ले जा रहे हो, मैं कौन हूं। अभी तक वो जो ड्राइवर था ट्रक का कहीं और जा रहा था, एकदम से उसको कुछ हो गया और वो रुक गया, और जैसे उसने देखा तो उसको ऐसा अनुभव हो रहा है मैं क्या कर रहा हूं, ये तो कौन है, साक्षात देवी है। और तुरंत उसने खुद ही कहा कि मेरे मन में ऐसा हो गया था और मुझे माफ कर दीजिए। ट्रक को वापस मोड़ा और सेंटर तक लेके गया। तो जब परमात्मा साथ होगा और याद होगी, अपने आप सुरक्षा होगी। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण आप सबके लिए, सेवा सेकंड नंबर पर है, सुरक्षा फर्स्ट नंबर पर, सेल्फ सेफ्टी। सेवा सेकंड नंबर, सेल्फ सेफ्टी फर्स्ट नंबर। ऐसे किसी स्थान या जगह पर नहीं जाना है जहां आत्मसम्मान, आत्मरक्षा, चरित्र, शील, जो भी शब्द कहो, उसकी रक्षा ना हो। सबसे पहले सेल्फ सेफ्टी, उसके बाद सेकंड नंबर पर सेवा। सेवा को वन नंबर पे नहीं लेके जाना, सेवा सेकंड। तो जहां परमात्मा साथ है वहां परमात्मा छत्र छाया है, उसके बाद जहां परमात्मा साथ है वहां परमात्मा दुआए है। उसकी दुआएं स्वतः मिलेगी, और उसकी दुआएं मिलती है साथ से और श्रीमत से। जितना जो एक्यूरेट श्रीमत पर चल रहा है, ऑटोमेटिक उसको सूक्ष्म में दुआएं मिलती रहती है, और वो दुआएं अपने आप मदद करेगी, गिरने नहीं देगी। दादी हमेशा कहती है और हमसे व्यक्तिगत रूप से कई बार कहा है कि आप जो भी दवाई दोगे ना मैं ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास दुआएं बहुत है, जो देना है दो, तुम्हारी दवाई से मैं ठीक नहीं होऊंगी, मैं दुआओं से ठीक होती हूं, क्योंकि दुआएं बहुत है। दादी के लिए बाबा ने कभी कहा है कि दादी चक्रवर्ती है, दादी आप विश्व की परिक्रमा करते हो, पर जब आप विश्व की परिक्रमा करते हैं तो बाप आपकी परिक्रमा करते हैं, दादी के लिए कहा है बाबा ने। तो जब परमात्मा साथ होगा तो ये सारी चीजें होगी। टॉपिक तो इसको जितना बड़ा हो उतना बढ़ सकता है, इसको यहीं पूरा कर रहे हैं, समय पूरा हो रहा है, तो फिर से अपने चिंतन को रिवाइज करना है। ओम शांति।